तो ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। न तस्य कश्चिन तपसा विद्यावाम न योगे वीरेण मनीषयावाम ने वाट धर्मे पर कहा सतोवाम कृतम विहंतम तनु बृंद विभूयाम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं एतत्सेवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्यतो तिष्ठतः। हे गार्गी प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा और इंद्र सभी उनके वश में है। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वह श्री भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां होती हैं, किंतु नामधारी वैज्ञानिकों को इंद्रिय गतिविधियां वृथा हैं, क्योंकि नामधारी वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां वृथा हैं क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवत गीता से 7:14 भी इसकी पुष्टि होती है। मम माया दुरत्या, प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि कोई श्री भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यह संभव है। आगे प्रभु लिखते हैं यहाँ मनीषिया यानी बुद्धि से इस शब्द का विशिष्ट महत्व है। प्रिव्रत तर्क कर सकते थे कि एक और ब्रह्मा जी उनसे गृहस्थ जीवन तथा राज्य भार स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उन्हें गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, ये प्रिव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही अधिकारी महाजन है। हाँ, उलझन इन परिस्थितियों के अंदर मनीषिया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि नारद मुनि और ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे, अतः प्रिव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। विषयान् अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा में युक्त करनी चाहिए, यही वास्तविक बुद्धि है। यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है, इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है और केवल परम ब्रह्म ही सत्य है, किंतु ब्रह्म तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का महान जो भक्त है यह बुद्धिमान भक्त है इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी स्त्री भगवान ने सृष्टि की है वो मिथ्या कैसे हो सकती है ना, किंतु सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य ही मिथ्या है। जैसा कि भगवद गीता में 5:29 कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के भोग के निमित्त है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, श्री भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता हैं। उनके भोग और सेवा के लिए ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वस्तु का भोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए, अपने बुद्धि का यही उचित उपयोग है। आगे ब्रह्मा जी प्रिव्रत से कहते हैं हे प्रिव्रत श्री भगवान की आज्ञा से ही जीव आत्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्तिष्टम जनतांग धत्ते। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं वे सुखोपभोग के प्रयोजन से आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें श्री भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। ये बनना है। कोई भी जीव अपनी इच्छा से नहीं कोई शरीर प्राप्त कर सकता है, उसे जो है श्री भगवान की आज्ञा से और प्रकृति द्वारा पृथक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में 3:27 कहा गया है, प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी ये नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों है, वे उन्हें इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्प जीवी हैं, तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु उनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्म से लेकर चींटी तक श्री भगवान के आदेश अनुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 15:15 इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, किंतु यह सत्य नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को श्री भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। तो इससे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि भगवान जो है अगर आदेश दे रहे हैं तो उस जीव की अपनी इच्छा के अनुसार आदेश दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान की इच्छा से अगर कोई आदेश मिलता है हमको, तो फिर हम क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि भगवान अगर आदेश दे रहे हैं तो वो भी हमारी इच्छा है कि हम करें, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती है और भगवान आदेश दे रहे हैं, ऐसा कैसे है? इसका उत्तर यही है कि हमने पहले कभी इच्छाएं की थी, हाँ ऐसा काम करने की हमें इच्छाएं की थी, है ना, तो समय संभव नहीं था कि हम ऐसा काम करें और फिर भी उस कर्म में जो है ना बंधे नहीं। तो भगवान फिर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिस समय आप कि वो काम करने की इच्छा भी पूरी हो जाए और आप कर्म से भी ना बंधे, है ना, उस समय आप करना नहीं चाहते वो काम, उस समय आपकी इच्छा बदल गई, लेकिन अब जो है तो अब जो है हम वो काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब भगवान ने सब ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि आपको ये काम भी करना और आपको दोष भी ना लगे, उस कर्म का दोष भी ना लगे, है ना, तो अब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कितने समय से उन चीजों पर विचार किया है, आपकी उस इच्छा पर विचार किया है, और आप अपनी इच्छा भी पूरी करो और आपको जो है दोष भी ना लगे, है ना। तो इतना सब जो है ना भगवान ने जो व्यवस्था की है आपको कर्म करने की, अब आप करना नहीं चाह रहे, है ना, तो वो तो ठीक नहीं है कि आप नहीं करना चाह रहे। तो ये जो है प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन है ना, तो अभी युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन की इस जीवन में या पिछले जीवन में कुछ इच्छा थी युद्ध करने की, है ना, तो वो जो है अवसर भगवान ने प्रदान किया है और उसमें उन्हें दोष भी ना लगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा की है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे वत्स, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए, इन विभागों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं, अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य है। यदवाचितं त्याम गुण कर्म दाम अभी सुदुस्तरेर वत्स वयम सुयो निजं वयम सुयोजिताम सर्वे वहामो बलि मीसुराय। प्रोतान सेव द्विपदे चस्पदहम द्विपदे चतुष्पदहम। तो इसमें क्या ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम बैल के समान हैं और हम जो है किस रस्सी से बंधे हैं, वर्णाश्रम धर्म की रस्सी से बंधे हैं। अपने वर्ण और अपने आश्रम के प्रति जो कर्तव्य हैं उनकी रस्सी से हम बंधे हुए हैं, है ना। तो ये भगवान ने बनाए, इस प्रकार से हम भगवान से बन सकते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो भौतिक प्रकृति गुण के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म है वो भगवान ने शास्त्र में बताए हैं। तो अगर आप भगवान के आदेश के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो भगवान से जुड़ना हो जाता है ना। तो वही है कि हम बैल के समान जो है ना, हमें काम करना चाहिए, धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य है। तो इसमें तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इस श्लोक में तंत्याम गुण कर्म दाम भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने गुणों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के चार विभाग यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म में गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। मतभेद कुछ लोगों का क्या कहना है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए, किंतु अन्यों का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है किसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के चार विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। हाँ, जन्म से नहीं है, गुण और कर्म के अनुसार है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। हाँ, तो गुण कर्म के अनुसार क्या है, चार प्रकार के वर्ण बनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। समाज का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो आजकल समाज का विभाजन इस प्रकार से नहीं है, है ना। तो समाज का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए, है ना। तो मानव समाज का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए। आगे, वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में 3:8-9 कहा गया है, वर्णाश्रमाचार्यवताम पुरुषेण परापमान विष्णुराराधिते पंथा नान्यत्तत्तोष कारणम। श्री भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय या सिद्धि है। इसलिए मनुष्यों को भगवान विष्णु की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाती है। आज के मानव समाज को पता नहीं है असली स्वार्थ क्या है, इसलिए भगवान की पूजा न करके पदार्थ की पूजा कर रहे हैं। आधुनिक समाज के निर्देशानुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वयं चालित वाहन इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकतावादी है, क्योंकि इसके व्यक्तियों को परम लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग विष्णु तक ना पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाहरी प्रकाश से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रकृति अंधी होती, अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है। प्रगति मतलब विकास, अंधा है भौतिक विकास। और इसके नायक भी अंधे होते हैं, वे अपने अनुयायियों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा माने जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई ये जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तभी उसका जीवन कृतार्थ है, अन्यथा मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। तो आज के श्लोक में जैसे भगवान कह रहे हैं कि तुम विवश होकर के कर्म करोगे अगर तुम मेरी आदेश से पालन नहीं करना चाहते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन को विचार करना चाहिए कि भाई मेरे अंदर क्षत्रिय का स्वभाव है, है ना, इसका मतलब मैं क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का जो है फिर जो कर्तव्य है उसे मुझे पूरा करना है, मुझे युद्ध करना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर लिखते हैं, अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वो यह जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तभी उसका जीवन कृतार्थ है, अन्यथा मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है ना, दुर्व्यवस्था। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए, तो मनुष्य का जीवन चाहे वह जिस पद पर हो सफल हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त हो सकता है, शूद्रों को नहीं, ऐसा नहीं है, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को यही इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का कार्य करूं तो इससे जो है भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे या मेरा ज्यादा लाभ होगा। क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्यों, इसमें बड़े दोष हैं। क्षत्रिय का कार्य बड़ा निंदनीय है, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। ब्राह्मण का कार्य बहुत प्रशंसनीय है, और ब्राह्मण जो ना अपने कार्य से भगवान के धाम जा सकता है या ऊंची गति प्राप्त कर सकता है, और जो क्षत्रिय है ये उसका कार्य तो बड़ा निंदनीय है ना, तो उसको अच्छी गति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वह जिस पद पर भी हो सफल हो सकेगा, जीवन सफल हो सकेगा, यानी जीवन का फल प्राप्त होगा, और जीवन का फल क्या है, कृष्ण प्रेम, सफल हो सकेगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त हो सकता है, शूद्रों को नहीं, यही वैदिक आज्ञा का, यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। वेदों की आज्ञाएं श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। तो ये भी समझना चाहिए अर्जुन को, जो है भगवान का ये इशारा है, अर्जुन को ये समझना चाहिए कि मैं क्षत्रिय हूं, तो भगवान का आदेश क्या है कि मुझे क्षत्रिय का कर्म करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। वेदों की आज्ञाएं श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। इस श्लोक में रस्सी से नाते हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वाले के निर्देशानुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देशानुसार चले तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर हो सकता है, अन्यथा अपने सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। देखा ना, अपने सनक के अनुसार कार्य, जैसे कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं, तो उससे क्या होता है, निराशा ही निराशा होती जा रही। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध ना करने के पक्ष में कई तर्क दिए अर्जुन ने, लेकिन उससे क्या हुआ, अर्जुन की निराशा बढ़ती गई, और अंत में फिर अर्जुन ने बोलना ही छोड़ दिया और क्या कहा, धर्म सम्मूढ़ जेदा, कार्पण्य दोषों का स्वभाव, मेरा स्वभाव वो बहुत हो चुका है, नष्ट हो गया है। तो निराशा पूर्ण अपने सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशा पूर्ण बन जाएगा, है ना। भगवान का आदेश है तो नीच कर्म भी जो है ना अपने लिए क्या है, कल्याणकारी है ना। और भगवान का अगर आदेश नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो अच्छे से, हाँ, तो अगर भगवान जो है आदेश नहीं दे रहे हैं तो अच्छे से अच्छा कर्म भी क्या होगा, हाँ, निराशाकारी हो जाएगा, निराशा पैदा करेगा है? तो प्रभु कहते हैं कि अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशा पूर्ण बन जाएगा। क्योंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा द्वारा त्रिव्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को सफल करें। भगवद गीता में भी 16:23 भी इसकी पुष्टि हुई है, यह शास्त्र विधि वर्तते काम कार्यतः तथा सिद्धि नवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यदि हम शास्त्रों अथवा ये यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रहेगी। आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हे प्रिव्रत, श्री भगवान विभिन्न गुणों के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो जिस रूप में है वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। ईसा विश्रिष्टम वरुण महिंग दुखम सुखम व गुण कर्म संगम आस्थायुक्तनाथ है चक्षुष्मतान। कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता, कितने भी साधन करो लेकिन शरीर के सुख दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि कर्मों से आपका शरीर बना है तो वो सुख दुख मिलेंगे शरीर से। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना पड़ता है, इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन श्री भगवान के द्वारा निर्धारित हैं जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। क्योंकि हम श्री भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ प्राप्त करता है उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। मतलब एक अंधा व्यक्ति आंख वाले पर आश्रित रहता है ना, तो इसी प्रकार से हमें भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जीव जो है आश्रित है, स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता है जीव, आश्रित रहना चाहिए। यदि हम चाहें तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, श्री भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य श्री भगवान के आदेशों का पालन है, ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। आगे प्रभु लिखते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 18:66 कहा गया है, कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की ये विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, एक ब्राह्मण ही समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय वैश्य या शूद्र भी, सभी इस विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मतांधा एवं नियमाना, मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले पुरुष का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवत गीता में दिए गए श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं गीता 18:65, क्या, मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरा पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो, इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे, ये मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। ये निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वो ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, श्री भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हांकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैल की उपमा दी गई है ना। बैल हांकने वाले के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहां चाहता है ले जाता है और जैसा भी जैसा चाहता है खाने को देता है। बैल समर्पित है ना। इसी प्रकार श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख या दुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी उन्होंने निर्धारित किया है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कर्म करो, उसी हैसियत में रहो, कोई जरूरत नहीं कि ब्राह्मण की आप हैसियत में आ जाओ, है कि नहीं? ऐसा नहीं, हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए, हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्यतया रजो तथा तमो गुणों के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने के कारण श्री भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को ये विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। हाँ, तो उच्च पद कैसा? उच्च पद का मतलब ईश्वर का प्रेम। उच्च पद का मतलब क्या है? ईश्वर का धाम, है कि नहीं? उच्च पद प्राप्त करे। संपूर्ण जगत गुणों के विशेषतया रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः बृहन नारदी पुराण में कहा गया है क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतुगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। इस प्रकार हमने पढ़ के सुनाया क्या? ब्रह्मा जी का उपदेश महाराज प्रियव्रत को।
किसको?
हाँ, महाराज प्रियव्रत को उपदेश है ना। तो बहुत ही अच्छा और गहरा जो है उपदेश है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं?
तो हरि नारायण प्रभु जी कह रहे हैं कि दक्ष जो है, जो अपने पुत्रों को गृहस्थ बनाना चाहते थे ना, तो वो उचित नहीं था। और नाराज जी जो है ना, उनको ब्रह्मचारी बना रहे हैं तो ये उचित है, क्योंकि उनका स्वभाव इस प्रकार का बन रहा है। हाँ, तो नाराज जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त के हृदय में जो है भगवान जो ना अक्सर या हमेशा ही समझो हमेशा ही मार्गदर्शन करते हैं कि किस समय क्या करना है, कि नहीं? तो नारद जी ने जो है उनको उपदेश दिया और वो जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए और वे फिर अपने पिता के पास लौट करके नहीं आए, है ना। तो दक्ष को विचार करना चाहिए कि भगवान की जो है ना ये ऐसी इच्छा है। इन दक्ष ने फिर गुस्सा होकर नारद जी को साथ दे दिया, है कि नहीं? लेकिन नारद जी ने उस सांप को फिर वरदान के रूप में ही मान लिया, है ना। तो दक्ष ने नारद जी को क्या साथ दिया था? कि किसी भी स्थान में तुम ठहर नहीं पाओगे। तो नारद जी ने दक्ष के इस सांप को क्या समझा? वरदान समझा, वरदान। तो नारद जी जो है हमेशा प्रचार करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, एक स्थान में ही ठहरते हैं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान जो है क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे आदेश से युद्ध नहीं करोगे तो अपने स्वभाव से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, है कि नहीं? और वो युद्ध कैसा है? विवश होके तुमसे कराया जाएगा। कि कैसे नहीं करता, है कि नहीं? कर युद्ध। जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो डंडे मार मार करके उससे काम कराया जाता है, है कि नहीं? तो कर। तो भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण है ये जो है जीव को काम कराते हैं, कि कर ऐसे। जैसे कठपुतली नाचती है उसी प्रकार से। तो या तो आप भगवान के भगवान के आश्रित रहोगे, भगवान के बस में होगे काम करो, और या फिर भौतिक प्रकृति के बस में होगे काम करो। आपका प्रश्न इनका प्रश्न है कि जो हमने कहा कि डंडा मार के काम कराया जाता है तो क्या है, स्वभाव को डंडा समझे या भौतिक प्रकृति गुणों को? हाँ, ये भौतिक प्रकृति के गुणों से स्वभाव बनता है। और 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सिरजुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। तो भगवान क्या कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से वे भ्रमित कर रहे हैं प्रत्येक जीव को। तो माया उनके हाथ में डंडा है, तो भगवान अपनी माया के द्वारा जीव से काम करा रहे हैं, तो यही डंडा है जिससे काम कराते हैं। या भौतिक प्रकृति के तीन गुण ही तीन रस्सियां हैं, जिस प्रकार कठपुतली तीन डोरियों द्वारा नचाई जाती है उसी प्रकार इन तीन गुणों द्वारा सभी जीव कर्म करने के लिए विवश हैं, और जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेता है वो इन तीन गुणों से मुक्त हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता के।